बहरहाल अब हम इसके बाद चलेंगे ऐसी आयत पे कि जिसको आप कह सकते हैं कि उस आयत को तबलीग और दावत की रीढ़ की हड्डी यानी बैकबोन ऑफ द दावा कह सकते हैं। क्या है आके देखते हैं। आयत नंबर 64। आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। कुल या अहलल किताब। कह दीजिए ए अहले किताब। अंदाज देखिए बिल्कुल स्टाइल बदल गया। सूरत बकरा में बार बार क्या था या बनी इसराइल, ठीक है, यहाँ क्या है या अहलल किताब। वहां बनी इसराइल से कौन मुराद थे? सिर्फ यहूद। यहाँ अहले किताब से मुराद यहूद और नसारा है। तो गोया के इस आयत में या अहलल किताब से मुराद यहूद और नसारा है। तआलौ इला कलीमतिन। आओ एक कलेमे की तरफ। लफ्ज़ कलेमे को हाईलाइट कर ले। कौन सा कलेमा? सवा इम बैनना व बैनकुम, जो हमारे और तुम्हारे दरमियान में मुश्तरक है। सवा का लफ्ज़ सवी, मसावी, खते मुस्तकीम, इस तरह के लफ्ज़ उर्दू में पढ़ते हैं, कॉमन है। यानी आओ हम सब मिलकर एक कॉमन थिंग पे बात करें, एक ऐसी बात जो तुम भी मानते हो और हम भी मानते हैं, आओ इस पे बात करें। वो बात क्या थी? अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह। ये है वो कलिमा। जो कलेमे को हाईलाइट किया था उसका एरो इसके साथ लगा दें। क्या कलेमा यहूद नसारा और मुसलमानों में कॉमन है कि अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, कि हम अल्लाह के सिवा किसी की बंदगी नहीं करेंगे। यहाँ वही बात है जिसको सूरत अल फातिहा में इय्याका नाबुदु वइय्या का नस्ताइन में हम देख चुके। पहली बात कि हम सिर्फ अल्लाह की बंदगी करेंगे, दूसरी बात वला नुशरिक बिही शैया, और इसके साथ किसी को शरीक न ठहराएंगे। पहली चीज है बंदगी, अल्लाह का बनना, अबूदियत, मोहब्बत, खौफ, इबादत, डर, तमा, आजजी, रिस्क, हर चीज के लिए अल्लाह की तरफ नजरें लगाना। दूसरी चीज शिर्क नहीं करेंगे। शिर्क क्या है? अल्लाह से भी मांगना और बंदों को या कुछ चीजों को बीच में ले आना, किसी हस्ती को और किसी हजर और किसी भी जिंदा या मुर्दा चीज को इसमें ले आना, ये दूसरी चीज है। दूसरा कलेमा ये था। तीसरी चीज वला यत्तखिज़ बादुना वादन अरबाबम मिन दूनिल्लाह, और ना हम में से कोई एक दूसरे को अल्लाह के सिवा रब ठहराए। नोट कीजिएगा ये तीसरा नुक्ता है। हम में से कोई एक, हम यहां से दावत का एक नुक्ता नोट कर लें कि तबलीग के अंदर अपने आप को शामिल कर लेना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए तुम में से, आप ऐसे, आप मुनाफिक, आप बेनमाजी, आज आपका क्या हाल है, नहीं, ये कहा करें हमारा क्या हाल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी ये अंदाज था। कुरान में भी ऐसा इशारा मिलता है कि मधु को बराह रास्त टॉर्चर करने या उसको बात कहने की बजाय अपने ऊपर बात ली जाए, इनडायरेक्ट बात का ज्यादा असर होता है। कुरान पाक में आप कई आयतें कई सूरतों में ये देखेंगे कि अरअयत अल्लज़ी, क्या तूने देखा उस शख्स को, कफर, जिसने कुफर किया है। अरअयत, क्या तूने देखा उसको कि जो रोकता है अपने बंदे को जब वो नमाज पढ़ता है। तो क्या अल्लाह को नाम नहीं पता थे अबू जहल के, और अल्लाह सुब्हान तआला को नहीं पता था कि यहाँ किस मुनाफिक की बात हो रही है या काफिर की, लेकिन इनडायरेक्ट बात की, ठीक है। ये तीसरी बात है कि तुम में से कोई और हम में से कोई किसी को रब ना बनाए। ये रब बनाना क्या कि यहूद और नसारा अपने प्रीस्ट को, या जिनको अपने यहूद के जुल्म है ना उनको हिब्र कहते थे, जमा उसकी होती है अहबार, हा बारो। हिब्र कहते हैं अरबी जुबान में स्याही को, इंक, तो लिखने पढ़ने का काम करने वाले अखबार। और नसारा के जो मौलवी होते थे उनको कहा जाता था रूहबान, राहिब से, ठीक है, दुनिया छोड़े हुए, तारिकुद दुनिया, बिल्कुल अपने आप को दुनिया से काट के सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए करने वाले लोग, ठीक है। जैसे आज हमारे यहाँ दीनदार हजरात के लिए नाम है मौलवी, आलिम, उलमाए कराम, शेख, ठीक है। तो उधर हिब्र और रूहबान होते थे। इन्होंने अपने उलमा को एक इख्तियार दे दिया था, और वो क्या था कि ये जिस चीज को हलाल कह देते थे बगैर दलील मांगे, बगैर किसी सनद के, ये उसको हलाल कहने लग जाते थे। रेफरेंस नहीं पूछते थे उनसे कि ये बात कहाँ लिखी है। हलाल और हराम का इख्तियार इन्होंने अपने उलमा को दिया। इसकी मिसाल ऐसी है कि जैसे आज के दौर में कहता है कोई के सफर के महीने में बलाएं उतरती हैं, किसी ने कह दी ये बात, बस सारी उम्मत शुरू हो गई। सफर बलाओं का महीना, यकम से 13 तक तेजी और उसके बाद जवाल, शादियां नहीं करनी। अब ये बात कहीं से किसी ने सुन ली, मानने लगे। कोई नहीं पूछेगा कि कुरान की कोई आयत, कोई हदीस, कोई सहाबा का अमल नहीं। तो ये होता है कि अब सफर का महीना, उसमें शादियां जायज थी, लोगों ने नाजायज कर दी। वजह ऐसे कह दिया किसी ने, ये होता है इतखज़ा, क्या करना उसको, यतखीज़ा बादुना बादन अरबाबन। आपने हातिम ताई का नाम सुना होगा, बड़ा मशहूर सखी था। इनका बेटा अदी मुसलमान हो गया, जो पहले नसारा थे फिर मुसलमान हो गए, नबी सल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। कहने लगे कि कुरान ने नसारा पर एक इल्ज़ाम लगाया है, क्रिश्चियंस पर एक इल्ज़ाम है कुरान का, और वो क्या कि यही बात कि वो तो अपने जो बड़े होते हैं उनको रब बना लेते हैं, हालांकि हम तो अपने अहबार और रहबान को खुदा नहीं बनाते, हम तो अल्लाह को रब कहते हैं, तो ये तो एक इल्ज़ाम है। तो उस पर अल्लाह के नबी सल्लम ने कहा था कि ऐसा नहीं होता कि तुम उनकी इबादत तो नहीं करते, लेकिन जब वो तुम्हारे लिए या उनके लिए किसी चीज़ को हलाल कर दें तो ये हलाल मान लेते हैं, जिसको वो हराम कह दें तो ये हराम मानते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये तो होता है, कहा यही होता है किसी को रब बनाना। अम्मा इन्नहुम लम यकूनु या वदूनहुम वलाकिन्नहुम इज़ा अहल्लु लहुम शैयन इस्तहल्लुहु व इज़ा हर्रमु अलैहिम शैयन हर्रमुहु। तो अल्लाह के नबी ने कहा यही है हराम। तो हम पीछे भी ये बात कर चुके कि किसी चीज़ को हलाल कहना और किसी चीज़ को हराम कहना, ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का इख्तियार है, अल्लाह शारे है। नबी सल्लम को भी ये इख्तियार नहीं दिया गया। सूरह तहरीम के शुरू में हम पढ़ेंगे कि एक मौके पे आपने अपनी बीवियों की खुशी के लिए शहद को हराम कर लिया, कसम खा ली कि आज के बाद शहद नहीं खाऊंगा, और अल्लाह ताला ने आयतें उतार दी, लिमा तो हर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक, ए नबी ये आपको किसने इख्तियार दिया कि आप उस चीज़ को हराम कर दें जिसको अल्लाह ने हलाल किया। बाज़ लोग हैं, मैंने फिश नहीं खानी, हराम कर ली, चखना नहीं, रोना आ देगा, ये नहीं खाना, ठीक है दिल नहीं करता, कम खाएं ना खाएं थोड़ी खाएं, लेकिन ये कभी ना कहें कि इसको मैं खा ही नहीं सकती। जैसे कोई हराम चीज़ मुंह में आए और इंसान का राहत महसूस करे, इस तरह ईमान वाला नहीं है। सेहत के लिए, अपने आप को मेंटेन करने के लिए बहुत सारी चीज़ें ना खाए, कोई हरज नहीं, लेकिन ये कहना कि ये मैं खाती नहीं, ये दुरुस्त नहीं है। और आज हम सब मुसलमान भी इसमें अपने आप को देख सकते हैं, कोई दीन के नाम पर बात गढ़ के पेश कर दे, फजाइल के नाम पर, ये सूरत पढ़ लो इसका इतना सवाब। इतनी किताबें मेरे पास रखी होती हैं कि जिसमें सूरतों के फजाइल, इस सूरत को पढ़ो तो रिश्ते होंगे, 900 दफ़ा पढ़ो तो ये होगा, सुबह रात को पढ़ो, दिन को पढ़ो, कहीं बच्चों के रिश्ते हो रहे हैं, कहीं कुछ सब कर रहे हैं, जिनको अल्लाह ताला ने अभी नहीं इस बात का शऊर दिया, पूछो कहाँ लिखा, कहते हैं बस मौलवियों ने कहा, देखो किताब में लिखा, और आप नीचे जाके देखें तो हदीस की किताब कभी नहीं होती। बाज़ दफ़ा कुछ नाम होते हैं हमारे जैसे आम लोग समझ लेते हैं, हाँ ये कोई किताब है, लेकिन वो ऐसे ही है जैसे आज के दौर में मैं कोई किताब लिख दूँ, वो अरबी में होती है चूँकि, तो उसका नाम लिखा होता है। तो याद रखिए कि दीन के नाम पे जब कोई चीज़ एक्सेप्ट करेंगे तो पहले उस पे कुरान और सुन्नत की मोहर देख लें। इसको तो हम अपनी वेस्टर्न स्टाइल में बहुत ज़्यादा देखते हैं। जब आप ग्रोसरी खरीदते हैं तो क्या आप ब्रांड देखते हैं? देखते हैं ना, सील देखते हैं कि सील खुली हुई तो नहीं, लिखा होता है ना कि अगर सील टूटी हो तो ये चीज़ ना लें, कॉपीड चीज़ नहीं ले सकते हम लोग। हम बिल्कुल उनकी चीज़ें लेते हैं जो कि उनकी बनी हुई होती हैं। स्टैम्प नोट देख लीजिए, किसी मुल्क का नोट, डॉलर का नोट, कौन सा डॉलर है जो कोई हम में से ही प्रिंट करवा ले जाके किसी भी मशीन से? नहीं, जो यूएसए गवर्नमेंट का है। क्या ऑस्ट्रेलिया यूएसए डॉलर छाप सकती है, और क्या दुनिया में उसको एक्सेप्ट किया जाएगा? सिंपल सी बात है, एक छोटा सा कागज़ का टुकड़ा जब तक हम स्टैम्प के बगैर कबूल नहीं करते, तो ये बताइए कि इतना बड़ा दीन जो आखरत की करेंसी थी, जिसकी बुनियाद पे जन्नत और जहन्नम थी, क्या हम उसको बगैर समझ के ले लें? तो कुरान पढ़ने के बाद जो एक मिजाज उभरता है ना लोगों में, अल्हम्दुलिल्लाह, वो क्या है कि रेफरेंस, हमारा दीन दलील का दीन है, रेफरेंस का दीन है। आप किताबो तहारा पढ़ रहे हैं, बहुत सारी बातें आपको वो लगेंगी जो आपकी पहली मालूमात से टकराती हैं, तो क्या करें, हदीस देख लीजिए, कुरान की आयत देख लें, रेफरेंस से बात की जाती है, यहाँ राह चलते तीर तुक्के नहीं छोड़े जाते कि ये हलाल ये हराम है। इसीलिए कोशिश की जाती है कि जहाँ कोई आयत आए या जहाँ कोई हदीस है वहाँ उस पर बात की जाए। तो बहरहाल ये तीसरी चीज़ थी। इन तीन चीज़ों की दावत देखे कहा, फ़इन तवल्लौ, फिर अगर वो मुंह फेर लें, फ़कूलू, बस उनसे कहो, अशहदु, गवाह रहो, बी अन्ना मुस्लिमून, हम तो मुसलमान हैं। यानी अहले किताब को इस्लाम की दावत दो, कलिमतन सवाइम पे लाओ और इन तीन बातों की दावत दे दो। बड़ा क्लियर कट मैसेज है इसमें। सिर्फ कलमा नहीं पढ़ाना लोगों को, उनका शिर्क भी ख़त्म करवाना है और दीनदारों का उनके जहनों में जो मियार है बड़ा बड़ा कि वो हमारे लिए क्या कुछ कर सकते हैं। याद रखिए कि हर मुशरिक कबीले ने जो इस्लाम पे नहीं होता कुछ ना कुछ मिथ रखे होते हैं, कुछ ना कुछ बातें रखी होती हैं किसी बुजुर्ग के नाम पे। किसी को वो गुरु कहते हैं, किसी को वो पीर साहब कहते हैं, किसी को वो शेख साहब कहते हैं। तो इन सारी चीज़ों की असल भी उन लोगों के सामने लाने की ज़रूरत होती है। अब ये आयत देखिए, आयत तो बुरी हो गई लेकिन हम सब के लिए इसमें अमल की बहुत सारी बातें हैं। पहली बात आप देखिए, कॉमन ग्राउंड से बात शुरू की, तालो इला कलीमतिन सवाम बेनाना। ये ना सिर्फ ये कि दावत और तबलीग का बुनियादी नुक्ता है, ये आम जिंदगी में इंसानी मुआमलात के अंदर भी यही कुछ है। इंसानी ताल्लुकात में जहाँ बिगाड़ आता है, शौहर बीवी का झगड़ा, बात सेपरेशन तक पहुंची हुई है, क्या होगा? वो भी बैठे तो वो उसकी बुराइयां करे, वो उसकी बुराइयां करे, और आप बैठ के चस्के लें बीच में कि हाँ और सुनाओ जरा, ये और तुम्हारे साथ क्या करते थे। नहीं, हमेशा पहले देखिए कि कॉमन चीजें कौन सी हैं। दो रूठे मुंह को भी बनाने लगे ना तो पहले उनसे कहा करें, अच्छा ये बताओ कि आपको इनकी बातें अच्छी कौन सी लगती हैं, और यकीन करें वो अच्छी बातें कहने में ही आधी से ज्यादा रंजिशें खत्म हो जाएंगी। होता क्या है कि जब हम किसी चीज के साथ बहुत अरसा रहते हैं ना तो हमें उसकी खूबियों का एहसास नहीं होता, तो हम फिर इख्तलाफात में उलझ जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह दावत और तबलीग के दरमियान जब आप किसी से भी बात करें, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह दो गवाहियां रिसेंटली हमारे पास मौजूद हैं कि जिसमें दीन की जब बात लोगों से हमने की, एक सिस्टर आमना और एक और दूसरी सिस्टर, तो दोनों ने उस मुलाकात के बाद ये ज़रूर कहा कि मुझे तो सेम लगता है, बहुत थोड़ा फ़र्क है। यानी वो तो बेशक एक एंगल से सेम कहें लेकिन हमेशा लोगों से कॉमन चीज़ों पे बात शुरू की। मैं इसकी आपको एक छोटी सी मिसाल देती हूँ। जैसे आपकी जैकेट है, उसकी जिप है, जिप खुली हुई है, अब आप जिप को जोड़ना चाहते हैं, कहाँ से जोड़ेंगे? ऊपर से डंडे पकड़ेंगे और उसको पिरोएंगे जहां इतना दूर हो चुके हैं? नहीं, आप नीचे से वो सिरा पकड़ेंगे जो दोनों के बीच में एक दूसरे पे चला जाता है। नीचे से पकड़ेंगे ना, यूं बंद करेंगे ना, दाने पे दाना चढ़ता जाएगा, पूरी जिप बंद हो जाएगी। जो नीचे से छोड़ के ऊपर से जिप बंद करना चाहे वो जिप तोड़ तो देगा लेकिन जिप जुड़ेगी नहीं। हमेशा इंसानों के साथ जिंदगी में मामला करते वक्त यही असूल रखें। फुला बड़ा बुरा, कोई बंदा, कोई आपकी दोस्त, मैं क्या बताऊं मेरी भाभी कैसी है, मेरी नंद कैसी है, मेरी सास कैसी है, मेरी बहू कैसी है। अब वो आपको अपना दुख सुना रही है, आप चाहते हैं कि उसकी इसलाह करें, सुन लें पहले थोड़ी सी बात, क्योंकि जब वो सुनाने के मूड में तो वो आपकी सुनेगी नहीं। फिर उसके बाद कहना, चलो एक बात तो बताओ, बातें अच्छी कौन सी हैं? अपनी सास की कोई अच्छी बातें बताओ, खूबी बताओ ऐसे बैठ के भी। और मैं एक अपनी आदत बताती हूँ, अच्छी है कि बुरी आई डोंट नो, लेकिन यह कि कभी कोई बंदा ऐसी बात करना चाहे, मसला पूछने या कोई, तो मैं फ़ौरन कहती हूँ ठहरे। तो मैं कहती हूँ, मैं ना नोटपैड खोल लेती हूँ, कॉपी, एक तो उससे वो पहले कॉन्शियस हो जाता है ये लिखने क्यों लगी है। तो मैं उन्हें कहती हूँ कि देखिए अब आप मेरे से मदद लेना चाहती हैं ना, आप जोश में बोलती जाएंगी, मैं हो सकता है कोई बात गलत समझूँ, फिर मैं उसकी बुनियाद पर आपको मशवरा दूँ जो गलत होगा, तो आप जो बोलेंगे ना मैं उसकी बस मेन छोटी छोटी बातें लिखूंगी। मेरे हाथ में जूं ही कागज़ कलम आता है ना तो मैंने फील किया कि बताने वाले का जोश ज़रा ठंडा हो जाता है, उसको पता है कि ये तो रिकॉर्ड में बात आनी है, राइट? या आप कहते थे ठहरे मैं रिकॉर्डिंग दबा लूँ ताकि मैं फैक्ट्स दूसरे तक पहुँचाऊँ, ऐसे ही मैं जो लंबी चौड़ी बातें अपनी तरफ से करूँ, तो मैं तो आपकी तरह नहीं कह सकूँगी। आपके हाथ में कागज़ कलम हो, सुन लें दोस्त की बात। फिर उसके बाद जब कहें कि अच्छा ये बताओ कि भला क्या क्या बात, लो मैं लिखती हूँ, भला तुम्हारी सास में क्या क्या खूबी है, अच्छा तुम्हारे शौहर में क्या खराबी है, अच्छी बातें क्या। यकीन करेंगे जब आप इस सोच के साथ बात करेंगे ना तो इख्तलाफी बातें होंगी दो चार दो चार, और अल्हम्दुलिल्लाह जो फायदे की बातें होती हैं वो 98 96 होंगी, माने के ना माने। तो ताल्लुकात में बिगाड़ ना पैदा करें। जब हम किसी को दीन की दावत देते हैं, जो खास तौर पे यहाँ पे नुकता है, और ये वो आयात हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिरकल और निजाशी और मुख्तलिफ बादशाहों को जब खतूत दिए थे तो उसमें ये था। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपको सीरत शुरू करवाएंगे, आप खुद ही उसमें पढ़ेंगे कि अल्लाह के नबी का दीन का काम करने का तरीकाकार क्या था। तो आपने यही आयतें लिख के भेजी थी कि आओ हमारे और तुम्हारे बीच में ये चीज़ें ठीक है। बस लोग ये कहते हैं कि यहूदियत और इस्लाम और नसरानियत में कोई फर्क ही नहीं है, ये भी झूठ है। ठीक है, उस पे बात आगे होगी, लेकिन अभी इतनी बात करके हम आगे चलते हैं। अब क्या हुआ, ये बात कह दी, मान लिया, रब नहीं बनाना, गवाह बना दिया, मुसलमान होने की बात। इस बेअन्ना मुस्लिमून को गौर से देख लें, क्योंकि इस सबक में फिरका वारियत का रद्द भी आ रहा है। कल के सबक में हमने हजरत ईसा के हवारियों के मुंह से ये सुन लिया था कि ठीक है हम अल्लाह के रास्ते में आपके मददगार हैं, लेकिन हैं हम मुसलमान। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने हर नबी के लिए जो उनकी उम्मत के लिए नाम चूज किया था वो इस्लाम था, वो मुसलमान थे। जब तक नबी दुनिया में मौजूद रहते हैं, किसी नबी की जिंदगी में वो नाम नहीं आता। बस आज देखिए कि यहूदियत या यहूदी के साथ हमारे जहन में हजरत मूसा के फॉलोअर्स आते हैं ना, बनी इसराइल, हजरत मूसा की जिंदगी में यहूदियत नाम का कोई फिरका, कोई मजहब कुछ भी नहीं था, कोई गिरोह ही नहीं था। ईसाइयत सुनते ही हमारे जहन में क्या आता है, ईसा अलैहि सलाम आते हैं ना, हजरत ईसा अलैहि सलाम की जिंदगी में ईसाइयत नाम का कोई फिरका ही नहीं था। बिल्कुल जैसे आज इस्लाम का सोचते हुए हमारे दिन में हनफी, शाफी और दूसरे और सुन्नी और ब्रेलवी और ये सारे आते हैं, ये सारे नाम ही नहीं थे। तो अल्लाह सुबहान तआला यहाँ यही बात फरमाते हैं कि देखो ये बात हो गई कि तुम सब मुसलमान हो। आगे चलते हैं आयत 65 में, या अहलल किताब, ए अहले किताब, लिमा तुहाजुन फी इब्राहिमा, तुम क्यों हमसे इब्राहिम के मामले में झगड़ते हो, यानी तुम इब्राहिम के बारे में हमसे झगड़ा क्यों करते हो। सवाल पैदा होता है झगड़ा क्या था, तो ये झगड़ा आप जरा पेंडिंग पे कर ले और आपको बाद में बताती हूँ। आगे अल्लाह ताला का कलाम सुन लीजिए कि वमा उन्जिलत तौरात वल इंजील इल्ला मिन बादिही, हालांकि तौरात और इंजील तो नहीं नाजिल की गई मगर उसके बाद। ठीक है, यानी तुम हजरत इब्राहिम के बारे में झगड़ा करते हो, वो झगड़ा क्या था ये लिख लीजिए, आगे आएगी बात। तो यहाँ नोट कर ले कि यहूद कहते थे कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम यहूदी थे, नसारा कहते थे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नसारा थे। और आपने ये बात समझ ली कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो तीन गिरोह थे, यहूद, नसारा और मुशरिकीन ने मक्का, तीनों हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपना लीडर मानते थे। ये भी एक बात है, वैसे कुछ शख्सियात ऐसी होती हैं, कुछ किरदार इतने खूबसूरत होते हैं कि दुनिया का हर गिरोह, हर मजहब, हर फिरका उनको अपना बड़ा मानता है, उनसे नस्बत जोड़ता है। जैसे कुछ लोग हैं ना, बड़े लोग होते हैं जिसको आप कहें बहुत इन्फ्लुएंशियल, या कोई काम करने वाले जिन्होंने इंसानियत को फ़ायदा दिया, तो लोग उनके साथ दोस्ती जोड़ लेते हैं, रिश्तेदारी जोड़ते हैं। कुछ किया, एक तो इब्राहिम को खिराज तहसीन है। हम सब भी दिन रात अपनी नमाजों में पढ़ते हैं कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहिमा व अला आली इब्राहिमा, और इसी तरह कमा बारकता अला इब्राहिमा व अला आली इब्राहिमा। तो ये एक तो हजरत इब्राहिम के बारे में वो चीज़ है जिस पे बंदा रश करे और दुआ करे कि अल्लाह मैं ऐसी जिंदगी बसर करके जाऊं कि बाद वाले मुझसे नस्बत जोड़ें, कोई ऐसा काम धंधा ना कर जाऊं, कोई ऐसा फ्रॉड ना कर जाऊं कि लोग मेरे से रिश्तेदारी भी छुपाएं, कि लोगों को पता ना चल जाए कि ये मेरे रिश्तेदार थे। जिंदगी ऐसी जियो कि लोग तुम्हारे साथ जुड़े। अब रह गई बात झगड़ा क्या था, यहूद कहते थे कि ये हजरत इब्राहिम जो थे हमारे मजहब पे थे, नसारा ने कहा ये, और मक्का वाले क्या कहते थे कि चूंकि हजरत इस्माइल ने खाना काबा बनाया, खाना काबा की नस्बत से इब्राहिम हमारे थे, तो गोया के तीनों कहते थे ये हमारे बड़े थे। तो अल्लाह ताला कहते हैं ये बताओ कि तौरात और इंजील तो नाजिल ही नहीं हुई थी उस वक्त, तरतीब पता है ना आपको, इब्राहिम के बाद कितने साल बाद मूसा आए जब तौरात आई, और कितने साल नीचे और जाते हैं तो हजरत ईसा के खुतबात का नाम इंजील। ठीक है, तो ये तो है ही नहीं थी। अफलात आकिलून, क्या तुम अकल नहीं रखते, क्या तुम सोचते नहीं। मैं जब भी शायद पे आती हूँ ना तो मुझे एक मिसाल समझ आती है, ये बात कैसे है, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई बच्चा अपने अम्मी अबू से कहे कि मैं आपकी शादी पे आया था, हैरत की बात है ना। वैसे आज के दौर में इतनी हैरत की नहीं है, अल्लाह माफ करे, लेकिन हकीकत है कि कोई बच्चा अपने माँ बाप की ही शादी के वक्त दुनिया में नहीं होता ना, कोई कहेगा तो झूठ है ना। इसी तरह देखिए, पहले की शख्सियत को आप यहूदी नसरानी कहें, ये बिल्कुल ऐसे ही जुमला है जिसको आप यूं कह लें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हनफी थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मालिकी थे, अबू बकर सिद्दीक जो थे वो शाफई थे, हजरत उमर फारूक जो थे वो हम्बली थे। कभी सुना आपने? कभी नहीं सुना ना। ये बिल्कुल वही बात, क्योंकि वो तो दौर पहले का था, ये सारे आयमा कराम तो बाद में गुजरे। ठीक है, अगर कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद फिरका होता तो कौन सा होता? अबू बकरी, उमरी, चार ही फिरके बना ले, अबू बकरी फिरका होता, उमरी फिरका होता, उस्मानी होता, अलवी होता, चारों नहीं मिलते, वो चारों भी मुसलमान थे। तो इस्लाम के असल मुसलमान है। आज हम मुसलमानों को भी तसल्ली नहीं होती जब तक हम अपने नाम के साथ कोई साबका और लाहका नहीं लगा लेते। ठीक है, तो अगली आयतों को पढ़ेंगे तो और समझ आएगा कि मुसलमान कौन है, अल्लाह और रसूल से निस्बत जोड़ने वाला। अल्लाह ताला कहते हैं आयत 66 में, हां तुम हाउलाई, देखो तुम लोग तो वो लोग हो, यानी तुम्हारी असल के, हा जज तुम फी मलकुम बिही इल्मुन, अब तक जो भी बहस मुबासा तुम करते रहे हो वो उन चीजों के बारे में है जिनका तुम्हें कुछ इल्म ही नहीं, यानी बेसनद की बातें करते हो, ना पढ़ते हो, ना लिखते हो, ना इल्म हासिल करते हो, और तुम बातें बड़ी बड़ी करते हो, मैं कौन हूं कैसा हूं। इसको आप समझिए ऐसे, एक दफा कोई मौका था तो एक सिस्टर थी, तो दर्स के बाद किसी दूसरी सिस्टर से कोई बातचीत होने लगी उनकी, तो वो कहने लगी कि मैं हनफी हूँ, हनफी हूँ मैं, खुद को वो सिस्टर कहने लगी। दूसरी सिस्टर कुछ और कहना चाह रही थी, मसला बिगड़ गया उनका, तो मेरे पास बात आई, कहने लगी कि आप बताएं क्या ना। तो वो सिस्टर जो थी वो कहने लगी कि मैं हनफी हूँ। मैंने कहा अच्छा सिस्टर, आप मेरे चंद सवालों के जवाब दें। मैंने कहा कि इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह का नाम क्या था? कहती क्या मतलब, ये उनका नाम नहीं था? मैंने कहा नहीं, ये तो उनकी कुनियत थी, उनको नहीं पता था। मैंने कहा ये बताइए कि अबू हनीफा रहमहुल्ला वो किस दौर की शख्सियत है, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने दौर बाद है? नहीं पता था। मैंने कहा ये बताइए कि उनके दो बड़े मारूफ शागिर्द हैं जिन पे आज फिकह हनफी के दो गिरोह बने हैं, वो कौन है? कहती मुझे नहीं पता। मैंने कहा वो किताबों के नाम बता दें जो आज फिकह हनफी में पढ़ाई जाती हैं जाके मदरसों में। कुछ नहीं पता था। तो मैंने कहा सिस्टर माइंड ना करें, आपको तो हनफी कहलाने का कोई हक नहीं है। ये है कि फलीमा तो हाज जो नफी मलई सलकुम बिही इल्मुन। आज कभी आप किसी शादी में, किसी दावत के बाद आम पब्लिक में लोगों की जरा मजहबी गुफ्तगू सुना करें, और अगर आप उनको वहां रोकें और उनसे चार सवाल पूछें तो आप देखेंगे कि उनको कुछ पता ही नहीं है जिस बारे में झगड़ते हैं। सिर्फ सुनी सुनाई बातों को दीन कहते हैं। आज भी यही हमारी उम्मत की बहुत बड़ी मुश्किल है कि हम खुद इल्म नहीं हासिल करते, और फिर फतवे, फिर बातें, ये नहीं है पीरियड्स में ये करना चाहिए, ये दुपट्टा नहीं लिया, ऐसे नमाज पढ़ो, नमाज के मसले छिड़ जाएं, फिर देखिए आप लोगों के फिकी मसले, और इसी तरह की दूसरी बातें, तलाक के मसले छिड़ जाएं, कितना मशहूर मसला है, किसी को उसकी हकीकत ही नहीं पता, कहाँ से शुरू हुआ, 20 तरावियों और 8 तरावियों का कितना मारूफ मसला है, किसी को इल्मी बातें नहीं पता। तो इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ें कि ना पढ़ें, किसी को हकीकत नहीं पता, ऊंची पढ़ें नीचे पढ़ें नहीं पता। तो लिहाजा पहले इल्म हासिल करो। अल्लाह ताला इसमें यह पैगाम देता है कि तुम इस बात को भी नहीं समझते, तुम्हें क्या हो गया, क्यों तुम इन बातों में अपना वक्त जाया करते हो, क्या तुम इस पे गौर नहीं करते? तो मान लो कि वल्लाहु यालमु व अंतुम ला तालमून, अल्लाह जानता है और तुम कुछ नहीं जानते, तुम्हारा इल्म बहुत थोड़ा है। वो दीन जो बात की पैदावार थी, तुम उसके साथ हजरत इब्राहिम को जोड़ते हो, ऐसी बात नहीं है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तुम्हारे ख्याल के मुताबिक तो तुम्हारे मजहब पे हो सकते हैं, लेकिन हकीकत में वो कौन थे? अगली आयत देखिएगा।